एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी दुनिया में झांकने वाले हैं वो है लूक सांट, एक बेल्जियन अमेरिकन लेखक, आलोचक, इतिहासकार, जिन्हें अक्सर सांस्कृतिक पुरातत्ववेत्ता भी कहा जाता है। हो सकता है ये नाम आपने पहले सुना हो या शायद नहीं सुना हो, लेकिन उनकी नज़र शहरों को, उनकी भूली बिसरी कहानियों को देखने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका पेश करती है। तो आज हम उनके जीवन और उनके विचारों के सफर को थोड़ा खंगालेंगे।
हाँ, और देखिए, शुरू में ही एक चीज़ शायद साफ कर देनी चाहिए। जो स्रोत सामग्री है उसमें एक किताब का जिक्र था, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, पर वो किताब असल में रिबेका मकाई का उपन्यास है।
हाँ।
2022 का। लूक सांट ने इस नाम से कोई किताब नहीं लिखी। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो लूक सांट के पूरे लेखन, उनके जीवन पर केंद्रित होगी। हम उसी को कह सकते हैं उनकी किताब मानकर उसके पन्ने पलटेंगे।
बिल्कुल सही कहा। और लूक सांट सिर्फ मतलब इमारतों और तारीखों के इतिहासकार नहीं है, उन्हें तो शायद शहरों की आत्मा की पड़तों को उधेड़ने वाला कहा जा सकता है।
आत्मा की पड़तें, अच्छा कहा।
वो इतिहास के उन कोनों में रोशनी डालते हैं जहां आम तौर पर कोई नहीं झांकता, जैसे पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स, भूले बिसरे अखबारों की कतरने, गुमनाम तस्वीरें या दीवारों पर धुंधलाते विज्ञापन। ये सब उनके लिए सुराग हैं इतिहास के।
और यही उनकी सबसे बड़ी देन है मेरे ख्याल से। उनका मानना था कि किसी जगह का असली इतिहास वो आलीशान इमारतों या विजयी गाथाओं में नहीं है,
हाँ,
बल्कि वो छिपा है उसके दागों में, उसकी धूल में, जो लोग हाशिए पर हैं उनकी जिंदगी में, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों के निम्न जीवन, मतलब लो लाइफ, उसको सामने लाकर उन्होंने शहरी इतिहास की हमारी समझ को ही एक तरह से पलट दिया। उन्होंने इतिहास को, आप कह सकते हैं, सत्ता के गलियारों से खींचा और आम आदमी की गलियों में ला खड़ा किया।
तो चलिए इस अनोखे इतिहासकार के सफर की शुरुआत से पड़ताल करते हैं। लूक सांट का जन्म हुआ 1954 में बेल्जियम के वेरवियर शहर में।
वेरवियर्स, हाँ।
ये एक औद्योगिक शहर था जो उस समय थोड़ा ढलान पर था। परिवार मजदूर वर्ग से था और माहौल था दूसरे विश्व युद्ध के बाद की कमी का, अनिश्चितता का। शायद इस माहौल ने ही उनमें चीजों को बारीकी से देखने और संसाधनों की कमी के प्रति एक संवेदनशीलता पैदा की होगी।
हाँ, हो सकता है। लेकिन उनके बचपन का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो था 1960 के दशक की शुरुआत में परिवार का अमेरिका आना।
अमेरिका आना, हाँ।
और वो किसी मतलब अमेरिकी सपने की तलाश में नहीं आए थे, वो आए थे आर्थिक शरणार्थी के तौर पर।
अच्छा।
और ये जो भारी होने का अनुभव था ना, ये सिर्फ एक निजी संघर्ष नहीं रहा, इसने उन्हें अमेरिकी संस्कृति को एक ऐसी अनोखी आलोचनात्मक नज़र से देखने की क्षमता दी जो शायद किसी अंदरूनी व्यक्ति के पास नहीं होती।
सही बात है।
हर चीज, भाषा, रीति रिवाज, लोगों का बर्ताव, सब उनके लिए अध्ययन का विषय बन गया। और यही अनुभव देखा जाए तो उनके भविष्य के काम की नींव बना, मतलब इतिहास को हाशिए से देखने का नजरिया।
उनका बचपन और किशोरावस्था फिर न्यूजर्सी के उपनगरों में बीती और बाद में अपर मैनहट्टन में। ये दौर अकेलेपन का भी रहा होगा, लेकिन शायद इसी दूरी ने उन्हें अमेरिकी समाज को बेहतर समझने का मौका दिया। उनकी दिलचस्पी भी अजीब चीजों में थी। पुरानी इमारतें, दीवारों पर फीके पड़ चुके अक्षर, पुराने अखबारों की कहानियां, बाद में पंक रॉक संगीत और फ्रांसीसी प्रतीकवादी कविता, इन्होंने भी उन्हें काफी प्रभावित किया। ये सब चीजें भी तो मुख्य धारा से हटकर ही थीं।
बिल्कुल। और उनकी औपचारिक पढ़ाई वो ज्यादा नहीं चली। 1970 के दशक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो जरूर, पर जल्दी छोड़ दिया।
छोड़ दिया क्यों?
उन्हें लगा फिर ये जो अकादमिक दुनिया है ये बहुत संकरी है, शहर की असली जिंदगी से कटी हुई है। उनके लिए तो असली विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क शहर खुद था।
अच्छा।
हाँ, सेंट मार्क्स बुकशॉप जैसी किताबों की दुकानें, सीबीजीबी जैसा पंक रॉक क्लब, पुरानी फिल्में दिखाने वाले सिनेमाघर, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, यही उन्होंने खुद को गढ़ा असल में।
तो उन्होंने एक तरह से क्या कहते हैं, स्वनिर्धारित शिक्षा का रास्ता चुना, मतलब अपनी दिलचस्पी और खोज के जरिए खुद सीखना बिना किसी डिग्री के।
हाँ, ऑटोडिडैक्टिज्म।
और ये वो 70 और 80 के दशक का न्यूयॉर्क था जो आर्थिक रूप से तो बिल्कुल कंगाल था, खतरनाक भी था, लेकिन कला और संगीत के लिहाज से बेहद उर्वर।
बिल्कुल।
पंक रॉक, नो वेव सिनेमा, वो जो एक प्रायोगिक फिल्म आंदोलन था, और ग्रैफिटी कला, ये सब उसी दौर की देन है। शहर जैसे अपनी राख से ही कुछ नया बना रहा था।
और सैंड सिर्फ दूर खड़े देख नहीं रहे थे, वो उस माहौल का हिस्सा थे। उन्होंने फैनजीन के लिए लिखा, वो जो छोटी इंडिपेंडेंट पत्रिकाएं होती।
हाँ हाँ।
बैंड में संगीत बजाया और उस दौर की जो DIY यानी डू इट योरसेल्फ वाली रचनात्मकता थी, जो सत्ता विरोधी रवैया था, सड़कों की कच्ची सच्चाई थी, उसको पूरी तरह आत्मसात किया। इसी माहौल ने उनकी आवाज को वो पहनापन दिया जो उनके लेखन में झलकता है।
उनका साहित्यिक सफर फिर धीरे धीरे ही आगे बढ़ा। कई साल तक तो छोटी मोटी नौकरियां की। एक अहम मोड़ तब आया जब उन्हें द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, जो NYRB के नाम से मशहूर है,
हाँ NYRB,
बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका,
बिल्कुल, उसके मेल रूम में काम मिला। ये तो जैसे पिछले दरवाजे से साहित्यिक दुनिया में एंट्री थी।
हाँ कह सकते हैं, लेकिन अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान के भंडार की वजह से वो जल्दी पहचाने गए। जरा सोचिए, एक पंक रॉक बैकग्राउंड वाला खुद से सीखा हुआ शख्स बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के बीच।
आखिरकार उन्हें रिव्यू के साथ साथ विलेज वॉइस और आर्ट फोरम जैसी जगहों पर लिखने का मौका मिला, और वो फोटोग्राफी, साहित्य, संगीत, इन सबके एक दमदार आलोचक के तौर पर उभरे।
लेकिन जो असली धमाका हुआ वो था 1991 में उनकी पहली किताब लो लाइफ ल्योर्स एंड स्नेयर्स ऑफ ओल्ड न्यूयॉर्क के आने से।
लो लाइफ, हाँ।
ये किताब 1840 से 1919 के बीच के न्यूयॉर्क शहर के अंडरवर्ल्ड पर थी, मतलब उसके स्याह अनदेखे कोनों पर, और इस पर उन्होंने 10 साल से ज्यादा रिसर्च की थी।
10 साल से ज्यादा, हाँ, जुनून था वो। और ये किताब अपने आप में एक घटना थी, इसने इतिहास लेखन के जैसे सारे नियम तोड़ दिए।
कैसे?
इसमें शोध की गहराई तो थी ही, लेकिन भाषा किसी तेज धार वाले उपन्यास जैसी थी, और बनावट वो किसी कोलाज आर्ट की तरह थी, बिखरी हुई पर फिर भी मुकम्मल। ये इतिहास था जेब कतरों का, नशेड़ियों का, गलियों में पलने वाले बच्चों का, उन लोगों का जिनका जिक्र बड़ी इतिहास की किताबों में मिलता ही नहीं।
वाह।
लो लाइफ को जबरदस्त कामयाबी मिली। इसने न्यूयॉर्क के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इतिहास अब सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की कहानी नहीं रहा था।
लो लाइफ के बाद तो फिर सॉन्ट अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण गैर फिक्शन लेखकों में गिने जाने लगे होंगे।
बिल्कुल, उन्होंने और भी कई अहम किताबें लिखी, जैसे द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्स। ये उनके बेल्जियम में बीते बचपन और पहचान की तलाश पर एक संस्मरण है।
अच्छा।
फिर द अदर पेरिस, जिसमें उन्होंने लो लाइफ की ही तर्ज पर पेरिस के अनदेखे इतिहास को खंगाला, और कई निबंध संग्रह भी आए उनके,
और वो पढ़ा भी रहे हैं शायद।
हाँ, बार्ड कॉलेज में, वहाँ वो लेखन और फोटोग्राफी का इतिहास पढ़ाते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में भी बहुत खुलकर लिखा है, जैसे डिप्रेशन या हमेशा एक बाहरी महसूस करने की भावना, जो जाहिर है उनके आप्रवासी होने के अनुभव से गहरे जुड़ा है।
और हाल ही में 2021 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने लिंग परिवर्तन यानी जेंडर ट्रांजिशन की भी घोषणा की।
हाँ, ये उनके जीवन का एक और अध्याय है, और ये भी कहीं ना कहीं पहचान की तरलता और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ उसके टकराव पर उनके जीवन भर के चिंतन से जुड़ता है। ये रुकने का नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से समझने और, कह सकते हैं, एकीकृत करने का दौर लगता है। उनके बुनियादी सवाल आज भी वही हैं। इतिहास किसे याद रखता है? असली कहानी आखिर छिपी कहाँ है?
उनके काम के मूल में फिर इतिहास को देखने का कैसा नजरिया है?
देखिए, उनका नजरिया गहरा लोकतांत्रिक है, लगभग अराजकतावादी भी कह सकते हैं। वो मानते हैं कि जिसे हम आधिकारिक इतिहास कहते हैं ना, वो अक्सर सत्ता में बैठे लोगों का रचा हुआ प्रचार होता है।
प्रोपेगेंडा?
हाँ, एक तरह से अपनी ताकत को सही ठहराने का तरीका। इसलिए वो हर तरह की भव्य कहानियों यानी मास्टर नैरेटिव्स पर शक करते हैं, चाहे वो सरकार की हों या बड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं की। वो दुनिया को नीचे से ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि सच्चाई बड़ी घोषणाओं में नहीं, बल्कि आम, अक्सर हाशिए पर धकेले गए जीवन के छोटे छोटे विवरणों में छिपी होती है।
हाँ, ये कुछ कुछ वॉल्टर बेंजामिन के छिथड़े उठाने वाले यानी रैग पिकर वाले विचार जैसा लगता है।
बिल्कुल, जैसे छिथड़े वाला शहर के फेंके हुए कचरे से काम की चीजें ढूंढ लाता है, वैसे ही साउंड इतिहास के कूड़ेदान से भूली हुई पुलिस फाइलें, जुग्गी झोपड़ियों की पुरानी तस्वीरें, सनसनीखेज अखबारों की कतरन, इनसे अर्थ निकालते हैं।
उनके लिए अतीत कोई स्थिर बंद अध्याय नहीं है,
वो एक लगातार बदलता विवादों से भरा मैदान है, जिस पर लगातार कुछ लिखा जा रहा है और मिटाया भी जा रहा है।
शहर एक नक्शा नहीं, बल्कि एक पैलिमसेस्ट।
पैलिमसेस्ट मतलब वो पुरानी पांडुलिपि जिस पर बार बार लिखा गया हो।
हाँ, और पुरानी लिखावटें पूरी तरह मिटी न हो, झलकती रहें।
और इस नजरिए के पीछे गहरी नैतिक प्रेरणा भी है उन लोगों की, गवाही देना जिन्हें भुला दिया गया। ये उनके अपने जीवन के अनुभव से आता है। एक आप्रवासी, एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उन्हें हाशिए पे पड़े लोगों के लिए एक स्वाभाविक हमदर्दी है। ये एक तरह से ऐतिहासिक न्याय की तलाश है, उन लोगों को आवाज और सम्मान देना जिन्हें उनके समय में भी नजरअंदाज किया गया और बाद में इतिहास से भी मिटा दिया गया।
ये भी दिलचस्प है कि उन्हें अधूरेपन से, खंड यानी फ्रैगमेंट से भी एक तरह का लगाव है। अधूरी तस्वीर, अनसुलझा जुर्म, भीड़ में गुमनाम चेहरा, रिकॉर्ड में जो खाली जगह है वो उन्हें जैसे खींचती हैं।
हाँ, और ये उनके कोलाज बनाने के शौक से भी जुड़ता है। जैसे कोलाज में अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनती है,
सही
वैसे ही वो इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो सीधी सरल कहानी से ज्यादा जिंदगी की उलझी हुई सच्चाई के करीब होती है।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका कैसा रहा है?
वो लड़ते नहीं है, विश्लेषण करते हैं। बौद्धिक दृढ़ता, अकेले काम करने का समर्पण और एक शांत किस्म की सहन शक्ति। आप सोचिए, लो लाइफ जैसी किताब लिखना ही अपने आप में गुमनामी और उपेक्षा के खिलाफ एक लंबा संघर्ष था।
बिल्कुल,
उन्होंने अपने निजी संघर्षों जैसे डिप्रेशन या पहचान के सवाल का सामना भी उसी बेबाक ईमानदारी से किया है जिससे वो ऐतिहासिक विषयों को देखते हैं। अपने लिंग परिवर्तन पर खुलकर बात करना भी इसी बौद्धिक खुलेपन का सबूत है। वो मुश्किलों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी में बुनने की कोशिश करते हैं।
सांड के जीवन में यकीनन कई अहम मोड़ आए होंगे जिन्होंने उनकी दिशा बदली। अगर तीन सबसे अहम मोड़ों की बात करनी हो तो पहला कौन सा होगा?
पहला तो शायद उनका अमेरिका आना ही होगा, लगभग 1960 में।
अमेरिका आना?
हाँ
हाँ
हाँ, ये बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसने उन्हें हमेशा के लिए बाहरी बना दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अमरीकी संस्कृति को कभी हल्के में नहीं ले सकते थे। हर चीज को सीखना पड़ा, समझना पड़ा। इसने उन्हें एक पैना पर्यवेक्षक बनाया और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति दी। इसी अनुभव ने उन्हें वो आलोचनात्मक दूरी दी जो उनके ऐतिहासिक नजरिए के लिए जरूरी थी। ये उनके लिए एक तरह का, कह सकते हैं, अनौपचारिक मानव विज्ञान का प्रशिक्षण बन गया।
और दूसरा अहम मोड़?
दूसरा था 1970 के दशक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोड़ देना।
अच्छा, पढ़ाई छोड़ना।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई छोड़ना नहीं था, ये एक चुनाव था। स्थापित संस्थाओं की मान्यता को ठुकराकर अपने रास्ते पर चलने का फैसला था। उन्होंने तय किया कि वो किताबों से, सड़कों से, शहर की उप संस्कृतियों से सीखेंगे। इस फैसले ने उन्हें एक स्वतंत्र विचारक और बौद्धिक विद्रोही के तौर पर स्थापित किया। ये उन्हें सीधे न्यूयॉर्क के पंक रॉक और कला जगत के बीच ले गया, जिसने उन्हें शायद यूनिवर्सिटी से ज्यादा सिखाया। इसने आधिकारिक ज्ञान के प्रति उनके संदेह को और पक्का कर दिया।
और तीसरा निर्णायक मोड़? निस्संदेह 1991 में लो लाइफ का प्रकाशन।
हाँ बिल्कुल, लो लाइफ, वो किताब एक धमाके की तरह थी। इसने सिर्फ सांड को ही स्थापित नहीं किया, बल्कि गैर फिक्शन लेखन और इतिहास को देखने के एक नए तरीके का दरवाजा खोला।
सही,
इसकी जबरदस्त आलोचनात्मक सफलता ने सांड को रातों रात एक बड़े लेखक का दर्जा दे दिया। इसने उनके सालों के अकेले और जुनून भरे काम को सार्थकता दी। ये साबित हुआ कि उनके अनोखे नजरिए के लिए पाठक मौजूद हैं। इसने उन्हें एक मंच दिया और उनके आगे के पूरे करियर की नींव रखी।
सांड के जीवन और काम से हम आम इंसान क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो शायद यही कि बाहरी होना हमेशा कमजोरी नहीं होती है ना?
बिल्कुल सही बात है। हाशिए में अक्सर वो सच्चाई छिपी होती है जो मुख्य धारा में दिखाई नहीं देती। दूसरी सीख है आत्मप्रेरित शिक्षा का मूल्य, अपनी जिज्ञासा को अपना रास्ता बनाने देना। और तीसरी कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक बहती नदी है, एक प्रक्रिया है जिसे हम लगातार जीते हैं और रचते भी हैं।
उनके निजी संघर्ष भी, जैसे अकेलापन, डिप्रेशन, पहचान का संकट, फिर लिंग परिवर्तन, ये सब कहीं ना कहीं हम सबके अनुभवों से जुड़ते हैं। अपनेपन की तलाश, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, ये आज के दौर की सच्चाइयां हैं जो उनके जीवन और लेखन में गूंजती हैं।
हाँ, और आखिर में उनका काम हमें सतह के नीचे झांकने की अहमियत सिखाता है, हमारे चारों ओर, हमारे शहरों में, हमारे समाज में। इतिहास और इंसानियत की कितनी परतें छिपी हैं। सांड हमें उकसाते हैं कि हम थोड़ा रुकें, ध्यान से देखें और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा गहराई और ज्यादा हमदर्दी से महसूस करें।
तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा से हम कौन से तीन मुख्य विचार लेकर जा सकते हैं? पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। बाहरी होने का एहसास एक लेंस बन सकता है, कमजोरी नहीं। सांड का पूरा जीवन आप्रवासन के अनुभव से प्रभावित रहा। वो हमेशा थोड़े अलग रहे, लेकिन इस अलगाव को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। इसने उन्हें अमेरिकी इतिहास और समाज को उस नज़र से देखने की क्षमता दी जो शायद किसी अंदरूनी व्यक्ति के पास नहीं होती। उन्होंने दरारों और हाशिए से प्यार करना सीखा, क्योंकि शायद वो उनमें अपनी ही छवि देखते थे। उनका काम सिखाता है कि गहरी सहानुभूति अक्सर बाहर से अंदर देखने वाले के नज़रिए से ही पैदा होती है।
बहुत खूब कहा। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। इतिहास एक अपराध स्थल जैसा है। सरकारी रिकॉर्ड या बड़ी किताबें वो कहानी बताती हैं जो ताकतवर लोग सुनाना चाहते हैं, लेकिन असली कहानी, सच्चाई, वो अक्सर पीछे छूटे सुरागों में मिलती हैं। साठ पारंपरिक इतिहासकार कम, जासूस ज्यादा हैं। वो आधिकारिक बयानों को दरकिनार कर सीधे पुलिस फाइलों, पुरानी तस्वीरों, गुमनाम लोगों के जिक्र तक पहुंचते हैं। वो दिखाते हैं कि इतिहास कोई सीधी साफ कहानी नहीं है, बल्कि एक उलझावा, हिंसक और कभी कभी सुंदर कोलाज है, और इसे समझने के लिए उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है जिन्हें बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया।
बिल्कुल। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। अवशेष पर ध्यान दें। हम अक्सर अपने शहरों और जीवन में बड़ी नई चमकदार चीजों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन लूक सांट का काम हमें नीचे देखने, करीब से देखने, थोड़ा धीमा होने का आग्रह करता है। असली कहानी पीछे छूट गई चीजों में है। किसी पुरानी ईंट की दीवार पर धुंधलाता विज्ञापन, जिसे घोस्ट साइन कहते हैं।
हाँ, घोस्ट साइन।
किसी सड़क का अजीब सा मोड़, किसी भूले हुए मकबरे पर लिखा नाम, ये उन अनगिनत जिंदगियों के निशान हैं जो हमसे पहले यहाँ थीं। इन अवशेषों को देखना सीखकर हम न सिर्फ अतीत को बेहतर समझते हैं, बल्कि उन जगहों से ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं जहाँ हम रहते हैं, और उस विशाल अदृश्य इंसानी कहानी से भी जिसका हम सब हिस्सा हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।